अक्षय जी, ये वही शब्द था जो अपने होश खोते हुए आखिरी बार हाना के लबों पर ठहरा था। इसी नाम को पुकारते हुए उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी। अक्षय उसके अचानक चीखने से घबरा गया। झटके से सर उठाकर देखा तो आहाना की आंखें खुल चुकी थीं। चेहरा पसीने से तर था और सांसें तेज चल रही थीं। अक्षय तुरंत उठकर उसके करीब आया। अनु, मैं हूं यहां आपके पास। आहाना का दिमाग अब तक उस घड़ी में अटका हुआ था। होश में आने के बावजूद वो सदमे की स्थिति में थी। अक्षय की आवाज कानों में पड़ते ही वो सेंस में लौटी। सर घुमाकर उसने टपटपाई आंखों से अक्षय को देखा, जो उसे धुंधला नजर आया। रुंधे स्वर में व्याकुलता से उसने सवाल किया, हमारा बच्चा? उसकी हथेली पेट पर थी। उन गुलाबी नम आंखों में एक माँ की तड़प, उसका दर्द, उसका डर समाया था। बच्चे के लिए आहाना को यूं तड़पते देखकर अक्षय की पलकें भीग गईं।
अक्षय जी, हमारा बच्चा कहाँ है? वो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? हमें हमारा बच्चा दिखा दीजिए। हमें बहुत बेचैनी हो रही है, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। कहाँ है हमारा बच्चा?
अपनी टपटपाई बेचैन निगाहें चहूं और घुमाते हुए आहाना बदहवास से उसे सवाल पर सवाल करती जा रही थी। उसके मन का भय उसके शब्दों में झलक रहा था और दिल अपने बच्चे के लिए तड़प उठा था। उसे बस अपने बच्चे को सही सलामत अपने सामने देखना था। उसे यूं पैनिक करते देखकर अक्षय उसे संभालने में लग गया था। वो बड़े ही प्यार से उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर जब आहाना एक ही सवाल बार बार दोहराने लगी तो अक्षय का सब्र जवाब दे गया। उसने वो कह दिया जो वो आहाना को अभी बताना नहीं चाहता था। मर गया हमारा बच्चा, चला गया हमें छोड़कर। इस दुनिया में आने से पहले ही उसने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद दी। अक्षय के शब्द आहाना के दिल को चीर गए। शरीर एकदम सुन पड़ गया, लबों पर चुप लग गई। वो पहले सदमे की स्थिति में बेयकीनी से उसे देखती रही, फिर इनकार में सर हिलाते हुए खुद में ही बड़बड़ाने लगी,
नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा बच्चा ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकता।
उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते रहे, कान में अक्षय के कहे शब्द गूंजते रहे। वो लगातार इस सच्चाई को झुटलाती रही। अंत में जब उसका दिमाग ये शौक बर्दाश्त नहीं कर सका तो होश गंवाते हुए अक्षय की बाहों में झूल गई। अक्षय ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में ठहरे आंसू बह निकले। इससे ज्यादा दुखद व कठिन और क्या स्थिति होगी किसी आदमी के लिए कि वो अपना बच्चा खो दे और जिस पत्नी के इर्द गिर्द उसकी सारी खुशियां घूमती थीं वो इस हालत में पहुंच जाए। काफी देर तक वो उसे अपने सीने से लगाए रखा, फिर उसे खुद से दूर किया और उसका चेकअप करने लगा। बाकी सब चीजें अब ठीक थीं, पर बीपी बहुत लो था। अक्षय ने उसे एक इंजेक्शन लगाया जिससे उसका बीपी नॉर्मल हुआ और वो गहरी नींद में सो गई। फिर उसके पास ही उसकी हथेली थामते हुए बैठकर सोचने लगा कि इस गहरे आघात को वो कैसे सहन करेगी। अगली सुबह सब आहाना से मिलने आए थे। उसे होश आ चुका था, पर ना वो किसी को देख रही थी, ना किसी की बात पर कुछ रिस्पॉन्स कर रही थी, ना कुछ कह रही थी। बस एक बेचैन शरीर जैसे स्थिर लेटी सीलिंग को घूरे जा रही थी। रात को वो जितना पैनिक कर रही थी अब उतनी ही शांत थी। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, सब लोग उससे मिले। किसी ने भी बच्चे का जिक्र नहीं किया। उससे बात करने की कोशिश करते रहे, पर आहाना एकदम सुन लेटी रही, जैसे ना तो उसे कोई इंसान नजर आ रहा है और ना ही किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर जयंती जी रो पड़ी। उसके पूरे परिवार की आंखें नम थीं, पर आज उनके आंसुओं का आहाना पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद डॉक्टर ने सबको बाहर जाने कहा। ऑपरेशन हुआ था उसका और इतना गहरा सदमा लगा था, ऐसे में उसके शरीर और दिमाग दोनों को आराम की जरूरत थी। यूं ही कुछ दिन और बीत गए थे, पर आहाना की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। या तो वो दवाई के असर से सोती थी या फिर सुनी निगाहों से एक टक सीलिंग को घूरती रहती थी। जयंती जी, जयेश जी, त्रिशांत, पल्लवी, निशांत, अंतरा, मामा मामी, अन्वय, अभिजीत जी, दादी बादा, चाचा चाची, सब उससे बात करने की, उसका मन बहलाने की कोशिश करते, पर आहाना किसी की बात पर रिएक्ट ही नहीं करती थी। रूपाली जी भी औपचारिकता निभाते हुए मिलने आई थी। आहाना जिंदा थी पर जिंदा लाश जैसे। सांसें चल रही थीं पर बोझ बन गई थीं। ऐसा लगता था जैसे उसके जीने की चाह खत्म हो गई है, जैसे अब उसे किसी चीज, किसी इंसान से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपने ही ख्यालों में खोई खोई सी रहती थी। उसके खाने पीने दवाइयों सबका ध्यान अक्षय खुद रखता था। एक वही था जिसकी बात पर वो कुछ रिएक्ट करती थी, उसकी कुछ बातें मान लेती थी। ऐसा क्यों था कोई नहीं जानता था। हालांकि बात वो उससे भी नहीं करती थी। उसने ऐसी चुप्पी साध ली थी जिसने सबको चिंता में डाल दिया था। अपने बच्चे की मौत की बात सुनकर एक आंसू नहीं बहाया था उसने, और वही सीने में दफन दर्द उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऑपरेशन के बाद शरीर में काफ़ी रिकवरी हुई थी, पर मेंटल कंडीशन अब भी वैसे की वैसी ही बनी हुई थी। आज उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था। जयंती जी और जयेश जी तो उसे उसके मामा के घर लेकर जाना चाहते थे जहां वो ठहरे थे, पर उसकी कंडीशन देखते हुए अक्षय ने उसे अपने साथ लेकर जाने की पेशकश की थी, जिसे सबको मानना पड़ा था। पल्लवी ने उसे घर जाने के लिए तैयार कर दिया था। डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वो अक्षय के डॉक्टर से मिलने गया था और इस वक्त उनके चैम्बर में उनके सामने बैठा था। मिस्टर सहगल, आप खुद एक डॉक्टर हैं और अपनी वाइफ की कंडीशन से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, फिर भी मिसेस सहगल की डॉक्टर होने के नाते मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगी। जी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि उनका काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है, इंटरनल इंजरी आई है। प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा तो इंजरी ठीक हो जाएगी, पर आगे चलकर वो दोबारा कंसीव कर सकेंगी या नहीं ये अभी से कह पाना ज़रा मुश्किल है। साथ ही वो इस वक्त फिजिकली के साथ इमोशनली और मेंटली भी काफ़ी वीक हैं। उन्हें प्रॉपर डाइट और मेडिसिन के साथ प्यार और केयर की भी बहुत ज़रूरत है। उनका जो दर्द उन्होंने अपने अंदर दफन किया है वो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। उनकी खामोशी का टूटना और उनके लिए सच्चाई को एक्सेप्ट करके उस दर्द को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इस सदमे से उभर पाएंगे। पर उनकी अभी की कंडीशन में ये ज़रा मुश्किल है। फिलहाल तो वो ट्रॉमा में है, अपने बच्चे को खोने का गहरा सदमा लगा है उन्हें। वो इस रियलिटी को जानती तो हैं पर उनका दिमाग ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही हैं। आप उनके पति हैं और इस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा आपके वक्त, प्यार, केयर और साथ की ज़रूरत है। इस वक्त आपको उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, उनके खाने पीने पर खास ध्यान देना होगा, ख्याल रखना होगा कि उनके आसपास पॉजिटिव माहौल रहे। उनसे अच्छी अच्छी बातें कीजिएगा, मोटिवेशनल नॉवल पढ़कर सुनाइएगा जिससे उनके दिमाग में पॉजिटिव बातें जाएं और वो उदासीनता से ज़िंदगी की ओर लौट आएं। उनकी जीने की जो चाह खत्म हो गई है आपको उसे वापस पैदा करना होगा। अपने प्यार से उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। जितना हो सके उन्हें खुश और व्यस्त रखने की कोशिश कीजिए, प्रॉपर आराम दीजिए उन्हें, और इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि कोई उनके सामने बच्चे का जिक्र ना करे, इससे उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ध्यान रहे कि उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिसका उनके दिमाग पर उल्टा असर पड़े या इमोशनली वो उससे प्रभावित हो। उन पर प्रेशर नहीं डालना है, बहुत प्यार से उनके साथ डील करना होगा, उन्हें पूरा वक्त देना है। अगर अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, सबका प्यार और साथ रहा तो वो जल्दी ही इस सदमे से उभर जाएंगी और नॉर्मल हो जाएंगे। जी, मैं आपकी कही बातें याद रखूंगा। अक्षय ने ध्यान से उनकी सारी बात सुनी और फिर उनके चैम्बर से बाहर निकल गया, फार्मेसी से दवाइयां ली, फिर आहाना पल्लवी संघर के लिए निकल गया
जहां सहगल और शुक्ला दोनों परिवार उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो आहाना को लेकर घर पहुंचा तो दादी ने उसकी नज़र उतारी थी। उसके बाद अक्षय उसे अपने कमरे में ले गया। कुछ देर सब यहीं रुके, फिर अपने अपने घर लौट गए, पर दादी और फलक यहीं रुक गई थी। रुकना तो पल्लवी और अंतरा भी चाहते थे, पर दोनों ही रूपाली जी के व्यवहार से परिचित थे और इन मुश्किल हालातों को और नहीं बिगाड़ना चाहते थे।